Halo,
Halo
Mumbai.
Mumbai.
किताबें बहुत है मार्केट में, रिच डैड पुअर डैड, ये वो, फाइव मंत्रा, फाइव लाइफ स्टाइल, सब बकवास। अब वो रो रहा है तो पूरी डॉर्मेटरी के 15 बच्चे रो रहे हैं अपने अपने पापा मम्मी को याद करके। हीरो चीफ के पास फोन आया कि ये जो बस चल रही है, इस बस में आप चढ़ जाइए। और हम उस बस में चढ़ गए और हम करीब 40-45 मिनट मोदी जी के साथ थे और मैंने उनका इंटरव्यू लिया। इट्स जस्ट वेलकम योर ऑडियंस ना यार, एटलीस्ट
आज आ रही है भाई। और क्या, लेट्स गो।
वेलकम 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 टू द मार्केट पॉडकास्ट,
लेट्स टॉक हसलाज।
हेलो एंड वेलकम to Let's Talk Hansraj. We are your hosts Sarthak and Anmol.
And you are listening to the podcast series by Market, the strategy consulting society of Hansraj College. Here we talk about everything.
Literally everything.
Welcome back to Let's Talk Hansraj. Today with us we have Mr. Shivang Mathur. He is a senior journalist with India Head. And welcome to the show, Mr. Mathur.
Thank you.
So, like, could you introduce yourself to the audience jinko nahi pata who Shivang Mathur is?
मेरा नाम शिवांग माथुर है। मैं भारत के एक प्रांत राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में मैं पत्रकार हूँ, एक चैनल है इंडिया अहेड, अंग्रेज़ी चैनल है, उसके अंदर मैं एसोसिएट एडिटर हूँ। पिछले करीब 13-14 साल से मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ, अलग अलग चैनलों में, अखबारों में मैं काम कर चुका हूँ। कुछ बड़ी बड़ी स्टोरीज़ पर भी हम लोगों ने काम किया है, काम करने का मौका मिला है, और उसी वजह से शायद मैं आपके सामने आज बैठा हूँ।
जैसे लाइक ऐसी कोई स्टोरी जो ऑडियंस को पता हो, बड़ी बड़ी स्टोरीज जिन पर आपने काम किया है एंड उन्होंने सुना हो आपके बारे में।
देखिए, मेरा जो करियर शुरू हुआ उसके, मुझे लगता है कि जो हमारे जीवन काल में जो सबसे बड़ी स्टोरी वो एक बेसिकली स्टोरी नहीं थी, एक रेवोल्यूशन था, एक क्रांति टाइप की इस देश में आ रही थी, वो करीब 2011-12 की बात है, जिसे हम कहते हैं द राइज ऑफ अरविंद केजरीवाल, द अन्ना मूवमेंट। तो वो एक ऐसा समय था जब हम लोग, जिसे कहते हैं ना कब जर्नलिस्ट, तो हम लोग बड़े युवा से पत्रकार थे और उस टाइम निकलने शुरू हुए थे हम लोग फील्ड में, करीब 3-4 साल ही हुए थे काम करते करते, सीख रहे थे। तो अचानक से देश में उस वक्त एक ऐसा माहौल बना जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत सारे करप्शन के आरोप थे, चाहे वो 2G का आरोप हो, कोलगेट का हो। उस वक़्त 2008-09 में आपको याद होगा कि CWG हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में, तो उसका स्कैम बहुत बड़ा था। कलमाड़ी साहब का नाम आया था, शीला दीक्षित और तमाम बड़े नेताओं का नाम आया था। तो वो दौर था जब कांग्रेस के ऊपर संकट के बादल गहरा रहे थे। एक तरफ से BJP अपोजिशन पार्टी में उनको पार्लियामेंट के अंदर हिट कर रही थी और दूसरी तरफ सड़कों पे और रामलीला मैदान के अंदर और जंतर मंतर पे अन्ना हजारे के आंदोलन चल रहे थे। और उसी में एक शख्स जो अरविंद केजरीवाल थे, जो मुख्य व्यक्ति थे उस आंदोलन के, उसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, बाकी अरविंद, ये कुमार विश्वास, किरण बेदी, तमाम लोग उसके अंदर शामिल थे। तो वो मुझे लगता है कि मेरे जर्नलिज़म के करियर की एक पहली ऐसी बड़ी घटना मुझे याद आती है जिसने हमारी चेतना को जगाया, जहाँ से हमें लगा कि देश में कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। और मुझे याद है कि जब 8-9 दिनों के लिए अन्ना हजारे रामलीला मैदान में बैठे थे मंच के ऊपर, मुझे पता नहीं आप लोगों के दिमाग में वो स्मृतियाँ कितनी ताज़ा हैं या नहीं, छोटे रहे होंगे आप लोग उस टाइम, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मेरी मदर ने मुझसे कहा फ़ोन करके कि हमने गांधी को तो नहीं देखा लेकिन हमने अन्ना हजारे को देखा है। सो वो दौर था। और उसके बाद फिर वो अनशन दिल्ली में चला, फिर दिल्ली के बाद वो बम्बई चला गया, बम्बई में वो फ्लॉप हो गया, वहाँ से वो 2-3 दिनों में ही अन्ना हजारे की तबीयत ख़राब हो गई, फिर वो दिल्ली लौटे और दिल्ली लौटने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये तय हुआ कि अब भाई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी और वही एक रास्ता है लोकपाल बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए देश में। तो वो एक घटना मुझे ऐसी लगती है जो कई महीनों तक, बल्कि मैं कहूँ महीनों से ऊपर साल तक वो जो चली, वो एक बड़ी घटना थी। दूसरी एक बड़ी घटना जो शुरुआती दौर में हमारे सामने हुई वो नोएडा के अंदर, एक तो आरुषि कांड जिसमें आरुषि का मर्डर हुआ, उनके घर में जो नौकर था हेमराज उसका मर्डर हुआ, वो भी घटना हमारे सामने हुई, उस स्टोरी को भी हमने बड़े करीब से कवर किया। मुझे आज भी याद है कि जब मैं गाज़ियाबाद की डासना कोर्ट में था तो वहाँ पे पेशी के लिए राजेश तलवार, जो नुपुर तलवार के फादर हैं, और नुपुर तलवार को लाया जाता था, तो एक व्यक्ति ने एक बड़े से चाकू से, बड़े से खंजर टाइप के चाकू से राजेश तलवार पे अटैक कर दिया था और उनकी उंगलियों में चोट आई थी। वो सब हमारे सामने की घटना है और वो केस भी हमने बड़े करीब से कवर किया, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखी। उस टाइम हम लोगों को बहुत ज़्यादा लॉ की नॉलेज नहीं थी और शुरुआती दौर था, लेकिन वो जो घटनाएं थीं वो हमारे सामने रहीं। फिर तीसरी घटना जो मेरे करियर की सबसे बड़ी घटना जो मुझे लगती है वो ये कि मुझे बहुत छोटी उम्र में एक तो पार्लियामेंट कवर करने का मौका मिला, शायद मैं उस वक्त 22-23 साल का था, तो एक मुझे राज्यसभा जो एल्डर्स हाउस कहलाता है, एक तो वो कवर करने का मौका मिला बहुत छोटी उम्र में, और उसके अलावा वो मैंने लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर करी, तो वहाँ का जो एक्सपोज़र होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो काफ़ी लोगों से आप मिलते हो, बड़े बड़े नेताओं से आपके संबंध बनते हैं, मुलाकातें होती हैं, और एक अलग तरह का, क्योंकि बचपन से आप देख रहे होते हो कि कुछ पार्लियामेंट है, कुछ राष्ट्रपति भवन है, तो वहाँ सब जाने का मौका मिला। फिर उसी वर्ष 2012 में हिमाचल प्रदेश के और गुजरात के विधानसभा चुनाव थे, और अब जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ तो इस बात को लगभग 10 साल हो चुके हैं, और इस साल फिर से हिमाचल प्रदेश के और गुजरात के चुनाव होने हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। तो ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ, तो हिमाचल चुनाव में कवर करने के लिए गया, उसके बाद जब मैं गुजरात चुनाव कवर करने के लिए गया तो गुजरात चुनाव में मुझे हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनको, मतलब होता है ना बच्चों का मन होता है कि मोदी जी से मिलना है या और इंटरव्यू कर लेंगे तो हम छा जाएंगे, उस टाइप का दिमाग था। तो मैंने उनको अपने ब्यूरो चीफ से कहा, गुजरात के ब्यूरो चीफ से उदय भाई से, कि उदय भाई मुझे मोदी जी का इंटरव्यू करवा दीजिए। तो उन्होंने उनके सेक्रेटरी को फ़ोन किया और उनके, कभी कभी आपकी किस्मत होती है ना, तो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि ठीक है कल सुबह वो 9 बजे की रैली है, आप वहाँ आ जाइएगा, जनसभा में आ जाइएगा, तो देखेंगे फिर। और हम सुबह सुबह उनकी जनसभा में पहुँच गए, उस वक़्त वो सद्भावना यात्रा मोदी जी निकाल रहे थे चुनाव से पहले, और उनके सेक्रेटरी का हमारे ब्यूरो चीफ के पास फ़ोन आया कि ये जो बस चल रही है इस बस में आप चढ़ जाइए, और हम उस बस में चढ़ गए और हम करीब 40-45 मिनट मोदी जी के साथ थे और मैंने उनका इंटरव्यू लिया। तो वो घटना मुझे बड़ी रोमांचित करती है आज भी, कि उस वक्त भी वो बहुत पॉपुलर लीडर थे और उस वक्त हम लोगों के अंदर भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि हम इतने बड़े पॉपुलर लीडर का इंटरव्यू करें और उनसे मिलें, और जो छोटी छोटी बातें मन में होती है ना कि इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं एक सेल्फ़ी खिंचवाऊँगा या उनसे कुछ बात करूँगा, और उनसे मैं मिला भी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ऐसा नहीं कि सीधे इंटरव्यू शुरू कर दिया हो, पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, फादर क्या करते हैं, वो सारी बातें हुई। और उस इंटरव्यू की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि मैंने उनसे करीब 8-10 सवाल पूछे थे, 6-7 सवाल उनको अच्छे लगे और बाकी के दो सवाल थे वो उनसे नाराज़ हो गए। उसके बाद वो इंटरव्यू ख़त्म हो गया और मैं बस से उतर गया, तो जो मेरा वो सेल्फ़ी वगैरह लेने का सपना था वो सब टूट गया क्योंकि वो आखिरी के दो सवालों में नाराज़ हो गए। बहरहाल उसके बाद भी उनसे गुजरात के चुनाव में कई बार मिलना जुलना हुआ, अब तो वो प्रधानमंत्री हैं तो खैर अलग बात है। तो ये सब रहा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे कई सारे विधानसभा चुनाव कवर किए, लोकसभा चुनाव 2014 के कवर किए, फिर तो बहुत सारी चीज़ें रहीं।
तो अगर हम पूछ सकते हैं वो क्या दो सवाल थे जिनसे वो नाराज़ हो गए, अगर हम पूछ सके तो ऐसे वो दो कौन से सवाल थे जिनसे वो नाराज़ हो गए?
नाराज़ वो इन सवालों से हुए कि वो जो दौर था और वो ऐसा था कि गुजरात के बाहर उस वक्त के जो मुख्यमंत्री वहाँ के थे नरेंद्र मोदी, वो बहुत पॉपुलर थे, दिल्ली में उनके बहुत चर्चे थे और अब तो पूरे विश्व में हैं, उस वक्त भी थे, और गुजरात की राजनीति के बारे में जो लोग बाहर जानते थे वो केवल नरेंद्र मोदी का नाम जानते थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है कि गुजरात के बाहर केवल लोग नरेंद्र मोदी को ही जानते हैं, बाकी आपकी कैबिनेट में इतने सारे मंत्री हैं कोई किसी का नाम तक नहीं जानता, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है अरुण। फिर मैंने कहा कि आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर बिलीव नहीं करते, आप लोकतांत्रिक चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, आप ऑटोक्रेट हैं। तो वो सवाल उनको थोड़ा सा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इस बात का सबूत है कि मैं लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में और प्रेस की फ्रीडम पे बिलीव करता हूँ। तो फिर मैंने काउंटर सवाल किया कि ऐसा क्यों है कि आपको ही लोग जानते हैं और बाकी लोगों को नहीं जानते, और जो भी आप लोगों से आपसे ऊपर उठने की कोशिश करता है उसको आप सप्रेस कर देते हैं। अब होता क्या है कि मैंने जैसा बताया कि उस वक्त मैं 22-23 साल का था, अब होता क्या है कि वो जैसे कहते हैं ना बाल मन, तो बाल मन के सवाल होते हैं। और पत्रकारिता में जैसे जैसे आपके अंदर समझदारी आती है, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, सवाल मन में उसी तरीके से उन्हीं शब्दों में उत्पन्न होते हैं, लेकिन आपको उन सवालों की जो भाषा है उसको शक्ल देना आ जाता है, समझे आप? अगर मुझे आपको गाली देने का मन कर रहा है तो मन में तो गाली ही आएगी, लेकिन मैं गाली किस तरीके से दूंगा ये आपको मैच्योरिटी सिखाती है, ये आपको तजुर्बा सिखाता है कि आपको पता भी लग जाए कि मैंने आपको गाली दी और आपको चुभे भी ना, या चुभ भी जाए तो आप मुझसे ये ना कह सकें कि मुझे बुरा लग गया। तो वो पत्रकारिता में, अब जैसे मैंने कहा ना फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस, सो द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस यू नो शुड बी राइट, ताकि आपके जो इंटरव्यू जिसका आप ले रहे हैं उसे बुरा ना लगे, या लगे भी तो वो उसका जवाब देने पे विवश हो जाए। तो वो चीज़ें धीरे धीरे आती हैं, बिद्दी टाइम आती हैं, समय के साथ आती हैं। उस टाइम मैं छोटा भी था और जो सवाल मन में थे वो पूछ लिए। खैर, तो वो यही सब मुझे लगता है कि कुछ ऐसे मौके जीवन में आते हैं। जो एक और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग, अपनी एक 2014 या 15 की बात है शायद, एक मुझे याद आती कवरेज, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी थी और बड़ी भीषण आग थी, उस पेड़ पौधे जल रहे थे, वहाँ जो जानवर थे वो बड़े परेशान हो रहे थे नेचुरली, क्योंकि जंगल में आग लग गई थी तो वो लोग शहरों की तरफ निकल के आ रहे थे। तो बहुत कोशिशें हुई वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसने बड़ी सारी कोशिशें करी, पर उसके बाद भी जो है कुछ हो नहीं पाया। तो यहाँ आर्मी ने और एयरफोर्स ने यहाँ जो है तय हुआ डिफेंस मिनिस्ट्री में कि भाई बैम्बी बकेट जो होती है उस बैम्बी बकेट से एयरफोर्स के चॉपर्स जो हैं वो भीमताल और नैनीताल के पास जो लेक्स हैं वहाँ से पानी उठाएंगे बैम्बी बकेट से और छिड़काव करेंगे जंगलों के ऊपर। तो मुझे मौका मिला मेरे चैनल की तरफ से, मैं उस टाइम News 24 में था, कि भाई आप जाइए, और एयरफोर्स के चॉपर्स में मीडिया को भी लेके जा रहे थे वो करतब दिखाने के लिए कि कैसे हम करते हैं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग कवरेज थी।
तो इस टाइम आप कितनी एज के होंगे, कब की बात है?
एज दो, मतलब वही मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं रही होगी, उतना थोड़ा बहुत ही रहा होगा, मतलब रहा, मुझे एग्जैक्ट एज तो याद नहीं है, वही रहा होगा शायद 25-26 साल रहा होगा ज़्यादा ज़्यादा।
चलिए, हम आपके अभी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और बात करने का हमें मौका मिलेगा।
हाँ।
तो पहले मतलब मुझे पूछना, आपने अपनी मदर का मेंशन किया था।
हाँ।
जो उन्होंने एक सेइंग कहा था कि हमें गांधी को देखने को नहीं मिला पर हमें केजरीवाल सर को देखने का मौका मिला,
अन्ना हजारे सर को
देखने का मौका मिला। तो आप अपनी मदर के बारे में कुछ बताइए, आपका चाइल्डहुड कैसा था, लाइक अपब्रिंगिंग कैसी थी आपकी?
अपब्रिंगिंग हमारी बहुत ही सामान्य थी, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जिस तरीके से बच्चे पलते हैं उसी तरीके की अपब्रिंगिंग थी। हमारी जॉइंट फैमिली थी, घर में दादाजी थे, दादी जी थी, हमारे ताऊ जी ताई जी थे, पापा मम्मी चाचा चाची, पूरा भरा पूरा परिवार था। घर में हम करीब 4 बच्चे थे, एक मेरी छोटी बहन है और चाचा के 2 बच्चे। तो वही स्नेहपूर्ण जो माहौल घर में होता है वो ही था। कॉलोनी के बच्चे सब भाई बहन टाइप के होते थे, आजकल तो खैर अलग दौर है, लेकिन हम लोग वही सब अपना कॉलोनी में क्रिकेट खेला करते थे, मैदान में खेला करते थे। उस टाइम हम लोगों ने गिल्ली डंडा और आपका क्या कहते हैं पिट्ठू जो होता है वो सब गेम्स बड़े खेले बचपन में। फिर उसके बाद थोड़ा परिवर्तन मेरे जीवन में तब आया जब मैं 7वीं क्लास में था, 13 साल का। तो एक मौका ऐसा आया जब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि अब तुम बोर्डिंग स्कूल जाना चाहोगे? तो मुझे तो पता नहीं था बोर्डिंग स्कूल क्या होता है, तो मैंने कहा कि चलिए देखते हैं। तो मैं चला गया उनके साथ। तो जयपुर के आगे एक छोटा सा गांव है फागी, वहाँ स्टैनी मेमोरियल पब्लिक स्कूल खुला था। तो वहाँ मैं गया, मैंने वहाँ देखा, वहाँ बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स, स्नूकर, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, मतलब तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पे जो हैं उपलब्ध थी। और मैं, मुझे तो खेल कूद का वैसे ही बहुत शौक़ था, पढ़ाई में मेरा मन बहुत ज़्यादा नहीं लगता था। तो जब मैंने वो सारी चीज़ें देखी तो मैं बड़ा उत्सुक हुआ, मैंने कहा यार यहीं रहना है बॉस। तो मैं फिर चला गया वहाँ, तो वहाँ मैं 4 साल रहा और वो मेरे जीवन का बहुत सुखद और बहुत ही सीखने वाला दौर रहा। वो इसलिए मैं आज उस बात को कह पाता हूँ क्योंकि एक तो उस उम्र में मुझे वहाँ बहुत राज्यों के लोग मिले बोर्डिंग स्कूल में, जो आम तौर पे आपको नॉर्मल स्कूल्स में नहीं मिलते। क्योंकि नॉर्मल स्कूल में क्या होता है ना कि लोकल शहर के लोग ज़्यादा आते हैं, पर बोर्डिंग में क्या है कि वहाँ बिहार के बच्चे भी आ रहे हैं, उड़ीसा के भी आ रहे हैं, पंजाब के भी आ रहे हैं, झारखंड के भी आ रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो वो जिसे कहते हैं ना डाइवर्सिटी, वो डाइवर्सिटी वहाँ देखने को बहुत मिली। तो सबके सब तरह के खान पान, डिसिप्लिन लाइफ क्या होती है, सुबह 5 बजे उठना होता था हम लोगों को, फील्ड में जाना होता था, योगा करनी होती थी, एक्सरसाइज करनी होती थी, फिर हमारा पूरा शेड्यूल होता था बोर्डिंग लाइफ में ना, पूरा शेड्यूल होता है आपका कि आप कितने बजे स्कूल जाएंगे, फिर कब खाना खाएंगे, फिर खाना भी खाएंगे तो सब साथ बैठ के खाएंगे, खाने से पहले प्रेयर करेंगे, झूठा नहीं छोड़ेंगे, बैंगन भी खाना पड़ेगा, लौकी भी खानी पड़ेगी, तोरी भी खानी पड़ेगी, बच्चे आमतौर पर नहीं खाते। तो ये सब चीज़ें बोर्डिंग लाइफ में हम लोगों ने सीखी। फिर जब मुझे याद है कि उस दौर में हम लोगों की फैमिली तो नहीं जाती थी प्लेन वगैरह में, फ़्लाइट ट्रैवल नहीं करते थे हम लोग उस टाइम, ट्रेन में भी जाते थे तो स्लीपर क्लास में जाते थे, लेकिन बोर्डिंग में गया तो पहली बार इंडियन एयरलाइंस से जो है हम लोगों को हमारा ट्रिप गया, तो वो 1999 की बात है। तो तब हमें फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठने का मौका मिला। अब आजकल तो जैसे मेरा बेटा जो है वो तो अभी से ही पैदा होते ही बैठ गया फ़्लाइट में, लेकिन हम लोगों के लिए वो बड़ा एक रोमांचित पल था जब हम फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठे। बड़ी बातें होती थी वो एयर होस्टेसेस के बारे में कि वो बड़ी सुंदर होती हैं, वहाँ जाओगे तो इतनी सारी टॉफियाँ मिलती थी, बर्गर मिलता था, वो सब मतलब चॉकलेट्स मिलती थी। अब तो सब बदल गया है आजकल तो, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा दौर था।
सर जैसा कि आपने बताया आप बोर्डिंग स्कूल में रहे, तो ऐसा कोई किस्सा या फिर कोई मेमोरी जो आज भी आपके चेहरे पर हंसी लेकर आता हो आपके बोर्डिंग स्कूल से?
बहुत सारी बोर्डिंग स्कूल की मेमोरीज हैं। वो उसमें क्या होता है ना, पढ़ाई से ज़्यादा रोमांचित आपको करती है डॉर्मेट्रीज की बातें। जब आप अपनी डॉर्मेट्रीज में होते हैं तो करीब 10-15 बच्चे एक साथ सोते हैं, तो बहुत बार होता है कि रात को पता लगा आप सो रहे हैं, एक बच्चा रो रहा है रजाई में दुबक के, उसको अपने पापा मम्मी की याद आ रही है। अब वो रो रहा है तो क्या होता है कि अब एक बच्चा अगर आपका कोई दोस्त रो रहा है तो आप कैसे सो सकते हैं? अब वो रो रहा है तो पूरी डॉर्मेट्री के 15 बच्चे रो रहे हैं अपने अपने पापा मम्मी को याद करके। तो इस तरह के किस्से बहुत होते थे। या जैसे होता है कि भाई जैसे बोर्डिंग स्कूल्स में होता है कि बाथरूम ऐसे नहीं होते जैसे हमारे घरों में होते हैं, एक एक कमरे के बड़ा बाथरूम होता है, बहुत सारे शार्ट्स लगे होते हैं, सब एक साथ नहा रहे होते थे। अब वो बातें मैं सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है। हम ट्रिप्स पे जाते थे, बस से जाते थे, कभी जोधपुर घूमने गए, कभी दिल्ली आए, कभी कहीं गए, तो उसमें हम लोग बसेस में जो रोड ट्रिप्स बड़े इंटरेस्टिंग होते थे, डांस वांस कर रहे हैं पूरे बसों में घूम रहे हैं, एनुअल फंक्शन होता था तो महीने डेढ़ महीने तैयारियां चलती थी तो उसी में क्लास बंक कर रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और भी ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं खैर, मतलब लेकिन मुझे लगता है कि ऑन अ सीरियस नोट मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कुछ समय हर बच्चे को बोर्डिंग में रह के आना चाहिए, उसको ज़िंदगी का एक अलग तजुर्बा मिलता है और वो बहुत जीवन में आपको सीखने का मौका देता है।
जैसे इसमें ये भी है कि जैसे कई पेरेंट्स होते हैं जिनका मानना होता है कि बोर्डिंग नहीं भेजना कि वहाँ पे जाके बच्चे बिगड़ जाते हैं, स्पेशली जो क्लास होती है 10th से लेकर 12th या फिर कॉलेज के अंदर भी, तो लाइक उस पर्सपेक्टिव पे क्या बोलोगे कि जाना चाहिए या नहीं?
देखो मैं एक बात बताऊँ, मैं खुद जैसे कहते हैं ना फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, मैं खुद वो हॉर्स हूँ, मैं खुद बोर्डिंग में रहा हूँ। जो बात आपने कही ना बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। क्या होता है कि जिसको बिगड़ना है ना वो माँ बाप के साथ रह के भी बिगड़ जाएगा। और पहली बात तो ये है कि बिगड़ने की परिभाषा क्या है भाई। बिगड़ने की परिभाषा ये है कि आपका बच्चा बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दे, शराब पीना शुरू कर दे, जो हमारे समाज में बिगड़ने को माना गया है, ठीक है। छोटी उम्र में पढ़ाई छोड़ के गर्लफ्रेंड बना ले, है ना, या मारपीट करे, यही होता है ना बिगड़ना। और बिगड़ना क्या होता है ना, आजकल ड्रग्स वग्स हो गई है, हमारे टाइम पे नहीं होती थी, हमारे टाइम पे सिगरेट विगरेट ज़्यादा मानी जाती थी। लेकिन जिसको ये सब काम करने हैं ना, वो पापा मम्मी के साथ में रहते हुए भी कर सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बोर्डिंग स्कूल्स में जितनी सिक्योरिटी, जितने स्ट्रिक्ट रूल्स और जितने हार्श पनिशमेंट्स होते हैं, वो आपको नॉर्मल स्कूल्स में नहीं मिलेंगे। क्योंकि 24 घंटे बच्चा वहाँ रहता है, तो वहाँ बच्चे के ऊपर जो स्क्रूटनी है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। 24 घंटे बच्चे की हर हरकत पे, बच्चा कभी डांट खाता है पढ़ाई की वजह से, कभी इसलिए डांट खाता है खाना नहीं खाया, कपड़े प्रेस नहीं किए, एड़ियाँ फट रही हैं तो वैसलीन क्यों नहीं लगाई, समझे आप, अंडरगारमेंट्स क्यों नहीं धोए, हैंकी क्यों गंदा है, नेल्स क्यों नहीं कटे हुए, आपके ऊपर स्क्रूटनी ज़्यादा होती है। नंबर कम आए तो टीचर्स आपका वहाँ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वही आपके पेरेंट्स हों, क्योंकि आप उन्हीं के बच्चे बन जाते हो ना, आप उन्हीं के साथ रह रहे होते हो, पेरेंट्स तो 2-3 महीने में एक बार आते हैं, तो इट इज़ मोर लाइक अ फैमिली, अ बिगर फैमिली हु लव्स यू, हु एट टाइम्स इंट्रोस्पेक्ट कि भाई बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसा हो रहा है, तो वो बड़ा परिवार बन जाता है आपका। मैंने कहा ना, मैं 12 लोगों का परिवार छोड़ के गया बोर्डिंग स्कूल में, वहाँ मुझे 500-700 लोगों का परिवार मिल गया। और प्लस अब इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग ऑल्सो। आप मुझे बताइए ना कि कौन से स्कूल में आपको हॉर्स राइडिंग सीखने को मिल रही है? अगर एक नॉर्मल बच्चा, छोटा 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा हॉर्स राइडिंग करना चाहता है, तो एक तो हर माँ बाप करवा नहीं पाएगा। अगर आप दिल्ली का उदाहरण ले लें तो किस स्कूल में हॉर्स राइडिंग है? अगर है तो उसकी फ़ीस बहुत मोटी है। अगर बच्चा स्विमिंग सीखना चाहता है तो हर स्कूल में स्विमिंग अवेलेबल नहीं है। बिलियर्ड्स खेलना चाहता है तो बिलियर्ड्स अवेलेबल नहीं है। बच्चा टेबल टेनिस खेलना चाहता है तो एक स्कूल में टेबल पता है लगा 2-4 हैं बच्चे के खेलने वाले, 500 नंबर ही नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लर्निंग के हिसाब से, और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन, जो बोर्डिंग स्कूल का जो आपको डिसिप्लिन है ना, वो आपकी ज़िंदगी को शेप करता है।
एक जो डिसिप्लिन है, जैसे आजकल ये बहुत लाइक ऐसा कल्चर, मतलब फिर काफ़ी सारी स्टडीज हुई है इसके ऊपर कि जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते, जैसे बोलते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, वेस्ट में जैसे काफ़ी बार बोला जाता है कि जितना आप डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट करने मेंटेन करने की कोशिश करोगे, बच्चा अपने एडल्टहुड में फिर टीनेज में उतना ही रेबेलियस निकलता है, एंड उससे उसका नेचर पर फ़र्क पड़ता है। तो हाउ मच डू यू फील कि डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन द वे ऑफ पेरेंटिंग, एंड आपको कैसे हेल्प कैन?
देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, डिसिप्लिन क्या होता है ना, डिसिप्लिन को हम समझ लेते हैं स्ट्रिक्टनेस। बच्चे, मेरे को ऐसा लगता है, देखो मेरा भी एक छोटा बच्चा है, बच्चे पहली बात तो सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को देख के ही सीखते हैं। हमारे पेरेंटहुड में प्रॉब्लम पता है क्या है आज की सोसाइटी में? एक तो हम पीयर प्रेशर में इतना जी रहे हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, अच्छा सामने वाले के घर में ये आ गया तो हमारे घर में क्यों नहीं आया, सामने वाले बच्चे का अच्छी जर्मन बोल रहा है तो हमारा बच्चा जर्मन क्यों नहीं बोल रहा, सामने वाले बच्चे का अच्छा गा रहा है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं गा रहा। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ, कभी कभी मैं अपनी घर पे मजाक भी करता हूँ दोस्तों से, कि आप देखिए कि बच्चा जब से पैदा होता है ना, तब से ही उसका कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। छोटे बच्चे आपके घर में आते हैं, आपको आपने देखा होगा, उसकी मम्मी क्या बोलेंगी आप बच्चे को, बेटा अंकल को ज़रा जॉनी जॉनी सुनाओ, मछली जल की रानी सुनाओ। क्यों सुनाना है उसको, मैं ये पूछता हूँ क्यों सुनाना है? माँ बाप बच्चे को क्यों कहते हैं कि बेटा पोएम सुनाओ? इसके पीछे रीज़न है कि वो अपने 1.5-2 साल के बच्चे से भी सोसाइटी में इम्प्रेशन जमवाना चाहते हैं। क्यों भाई? यानी आप 1.5 साल के बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि वो ये साबित करे कि देखो मम्मी ने कितना अच्छा सिखाया है, या मेरा बच्चा अभी से टैलेंटेड है, 1.5 साल की उम्र में जॉनी जॉनी सिखा रहा है, बोल रहा है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डिसिप्लिन की बात जहाँ तक है आपने कही, देखिए हम लोग जैसे मैं बीइंग अ पेरेंट, आज मैं देखता हूँ कि मैं जो करता हूँ वो मेरा बेटा करता है, बच्चे कॉपी कैट होते हैं। आप अपनी हैबिट सुधार लीजिए, बच्चा अपने आप सुधर जाएगा। आप अपनी वाइफ से तमीज़ से बात करेंगे, बच्चा अपने आप लड़की से जाके तमीज़ से बात करेगा। आप अपनी वाइफ से बदतमीजी से बात करेंगे, अपने घर में लेडीज़ से इल ट्रीट करेंगे, बच्चा जाके बाहर लेडीज़ को इल ट्रीट करेगा। आप अपने घर में सुबह उठ के पापा मम्मी के पाँव छुएंगे तो बच्चा अपने आप पाँव छुएगा, अपने आप उसमें संस्कार आएंगे। भाई संस्कार का कोई इंजेक्शन किसी मेडिकल शॉप पर थोड़ी आता है, आप उसको बचपन से संस्कार दीजिए। और रही बात बिगड़ने की, देखिए मैं एक बात बताऊँ बड़ी प्रैक्टिकल, हम सब अपनी अपनी उम्र में आके बिगड़ जाते हैं, कोई 14 में, कोई 15 में, कोई 16 में, कोई 18 में और कोई 25 में। लेकिन बिगड़ने के साथ साथ ज़रूरी यह है कि हमें संभलना भी आना चाहिए, ठीक है। मेरा ये मानना है, मैं उस पेरेंटिंग में विश्वास नहीं करता कि आप बच्चे को थप्पड़ मारते रहो, उसको बार बार हर चीज़ के लिए डांटते रहो, उसको फ्री रहने दो, उसको अपने हिसाब से चीज़ें करने दो, लेकिन उस पर मॉनिटर भी रखो उसका कि वो कहाँ मिल रहा है, किससे मिल रहा है। ये मैं मानता हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्ग कहते थे, मेरी दादी कहती थी कि बेटा दोस्त ना एक ही बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ, और मैंने अपनी लाइफ में वो अप्लाई किया है। मेरे बड़े लिमिटेड फ्रेंड्स हैं लेकिन अच्छे हैं, टचवुड। और मैं ये मानता हूँ कि कंपनी मैटर्स, ये बहुत सही बात है कि आपकी जो कंपनी है वो मैटर करती है ज़िंदगी में। अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी तो आप बेहतर इंसान बनेंगे, अगर आपकी कंपनी बुरी होगी तो आप बुरे इंसान बनेंगे, या आप मान के चलिए। बहुत रेयर होता है कि आपकी 20 लोगों की दोस्ती में एक आदमी हो जो पूरे 20 लोगों से इफ़ेक्ट ना हो। मैंने एक बार मेरी दोस्त से ये कहा कि उसकी शादी हुई थी, हम लोग बड़े इमोशनल थे उस टाइम, हमारी एक फ़ीमेल फ्रेंड थी, तो जब हम लोग ऐसे बात कर रहे थे तो मैंने उससे ही कहा कि ये सब लोग कहते हैं पेरेंट्स संस्कार देते हैं, वो देते हैं, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट दोस्त भी आपको संस्कार देते हैं, वो देते नहीं हैं। एक्चुअली क्या होता है, साथ रहते रहते ना आप उनकी बहुत सारी हैबिट्स को अडेप्ट कर लेते हो, उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातों को अडेप्ट कर लेते हो। जैसे आप बुरी आदतें अडेप्ट करते हो ना, ऐसे अच्छी आदतें भी अडेप्ट कर लो उनकी। अगर सार्थक में कुछ अच्छा है तो मैं सार्थक से कुछ ले लूँ, अनमोल में कुछ अच्छा है तो मैं अनमोल से कुछ ले लूँ, फला में कुछ अच्छा है तो मैं उससे ले लूँ। मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ बुरी हैबिट्स को अडेप्ट करें आप अच्छी हैबिट्स भी तो अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो उसके माँ बाप ने उसको संस्कार दिए हों वो आपके माँ बाप ने ना दिए हों, तो वो वाले संस्कार आप उससे ले लो अगर आप अच्छे दोस्त हो तो।
सर जैसा आपने बताया कि लाइक जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपके जो पर्सनैलिटी है उसको काफ़ी इम्पेक्ट करते हैं, आपके ऊपर काफ़ी प्रभाव डालते हैं वो, तो ऐसा कोई एक मैसेज जो आप अपने टीनेज सेल्फ को देना चाहें,
किसको?
दैट आपने टीनेज सेल्फ को दैट वुड हैव शेप्ड यू डिफरेंटली।
देखो क्या होता है कि विद द टाइम ना मैसेजेस बड़े बदलते रहते हैं, सोसाइटी क्या है कम्प्लीटली ना चर्निंग स्टेज पे है। हम लोगों का टाइम, हम लोग 80s किड्स हैं ना, लेट 80s किड्स हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो हम लोगों के टाइम अलग था, ठीक है। अभी जैसे मेरा बेटा है, अब वो 2.5 साल का है, वो फ़ोन पे लगा रहता है, जितनी फास्ट मैं यूट्यूब नहीं चला पाता मुझसे फास्ट वो यूट्यूब चलाता है, जितनी फास्ट मैं चीज़ें नहीं कर पाता वो वीडियो गेम्स खेलता है, तो लाइफ बड़ी चेंज हो रही है। तो अभी क्या है कि जो पुरानी लर्निंग्स हैं या जो अभी की लर्निंग्स हैं वो बड़ी डिफरेंट हैं, क्योंकि हम क्या होता है ना, हमेशा जैसे आपने सुना होगा अपने घर में, अरे हमारे टाइम तो ये होता था, ये सब फालतू बातें हैं। आपके टाइम पे क्या होता था? अब मेरे फादर मुझे कहते हैं मैं 16 किलोमीटर पैदल चल के जाता था। अरे भाई मैं आज 16 किलोमीटर क्यों चलूं? मेरे पास गाड़ी है। आपके पास उस टाइम नहीं थी, उस टाइम हालात अलग थे तो आप 16 किलोमीटर चलते थे। अब हमारे पास गाड़ी आ गई तो हम 16 किलोमीटर पैदल नहीं चलेंगे, हम 16 किलोमीटर कार से जाएंगे। हमारा जो आगे वाला जो जनरेशन होगा, जैसे मैंने कहा कि मेरा बेटा पैदा होते ही प्लेन में बैठ गया और मैं बैठा था 13-14 साल की उम्र में, जनरेशन गैप आ गया ना। तो ऐसे क्या है, लर्निंग्स में भी गैप आ रहा है। अभी मैं अपने हिसाब से ज्ञान दे दूं आपको कि भाई कैसा होना चाहिए टीनेज को, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति को बस ये रहना चाहिए कि वो, जो मुझे लगता है बेसिक फैमिली वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सोशल वैल्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप एक अच्छे इंसान बने, मतलब किसी का बुरा ना करें, मुझे ऐसा लगता है। किसी का आपके मन में ना, देखो क्या होता है, जेलेसी होती है ना, ये बड़ा बेसिक इमोशन है, वो 3 इडियट्स में है ना कि दोस्त फेल हो जाते हैं तो अच्छा लगता है ना तो वो वाला, ये क्या, ये जेलेसी बड़ा कॉमन इमोशन है, ये सब ठीक है, बट इंसान को बुरा नहीं होना चाहिए। बुरा मतलब समझ रहे हो कि मैं जान मूझ के किसी का बुरा करूं। और जो इंसान दिल से अच्छा है, ऊपर नीचे चलता है 19-20-21, लेकिन जो इंसान दिल से अच्छा है ना, वो मुझे लगता है कि जीवन में हर काम इवेंचुअली ठीक ही करेगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि जस्ट बी गुड टू योर सेल्फ, बी गुड टू सोसाइटी, बी गुड टू योर टीचर्स, बी गुड टू योर फ्रेंड्स, लिव हैप्पीली एंड ट्राई टू डू थिंग्स डिफरेंटली. क्योंकि आज की तारीख में क्या होता है कि जो रैट रेस है ना वो चलती रहेगी, वो हमेशा चलती आई है. अनटिल एंड अनलेस आप कोई भी चीज़ अलग से नहीं करोगे. देखो काम सारे सेम है. अब लोग आजकल ये कहते हैं कि यार आजकल ना इस कोर्स का ज़माना चल रहा है, आजकल ये कोर्स का ज़माना चल रहा है. एक दौर था जब सब MBA कर रहे थे, एक दौर था जब सब BBA कर रहे थे, एक दौर था जब सब डॉक्टरी कर रहे थे, एक था जब सब इंजीनियरिंग कर रहे थे. कोई दौर ख़त्म नहीं हुआ है. आज भी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आज भी डॉक्टर बन रहे हैं, आगे भी बनते आएंगे. द ओनली थिंग इज़ कि आप इंजीनियरिंग करें तो बेस्ट करें, आप डॉक्टरी करें तो बेस्ट करें, आप बाबा बन जाएं, ज्ञान बांटें तो बेस्ट करें. जो भी काम करें बेस्ट करें, और जब आप बेस्ट करेंगे दिल से करेंगे तो वो काम अच्छा होगा. और जो रही बात पर्सनैलिटी ट्रेट की, देखो वो 19, 20, 21 हमेशा ऊपर चलता रहेगा. आप यू कैन नॉट यू नो मेक ईच एंड एवरी वन सेम. बट जो बेसिक क्रक्स है ना लाइफ का, वो सबका सेम है. जो नींव है ना वो सबकी सेम है. उस नींव के अंदर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इमारतें तो टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं. इमारतों से मेरा मतलब है पर्सनैलिटी. लेकिन क्या होता है, जो बेसिक क्रक्स है ना, संस्कार, आपका संस्कार राइट होना चाहिए. नींव उसमें सीलन नहीं होनी चाहिए, उसमें गलन नहीं होनी चाहिए. अगर आपकी नींव ठीक है तो पर्सनैलिटी के कई शेड्स हमने देख लिए. अभी मैं 35 साल का हो गया हूँ. क्या होता है कि हर, मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, हर 4-5 साल में ना हमारी सोच बदल जाती है. आज जब मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ इस वक्त मेरी एक सोच है, जब मैं 40 साल का होऊंगा तो मेरी सोच अलग होगी, जब मैं 27 साल का था तो मेरी सोच किस अलग थी. आप मैच्योर हो जाते हो, आप इवॉल्व हो जाते हो, और वो इवॉल्वमेंट आपकी पूरी पर्सपेक्टिव को चेंज करके रख देता है. जो आज आप सोच रहे हो ना कॉलेज में, ये जो सब बैठे हैं आपके दोस्त, अभी जब आप 10 साल बाद मिलोगे ना, जब थोड़े थोड़े आपके सफ़ेद बाल होंगे, आप लोगों के चेहरे थोड़े और मोटे हो जाएंगे, शरीर थोड़े भर जाएंगे, तब आप लोगों की, जब आप लोग सब एक बार बैठना कहीं कैफ़े कॉफ़ी डे में या कहीं जहाँ भी आपको बैठना हो, उसके बाद सब बैठ के बात करना, यू विल सी. फेसबुक पे 2008 में, पहले तो ऑर्कुट हुआ करता था, फेसबुक पे मैं अगर अपने 2012 के पोस्ट चेक करता हूँ ना, मुझे हंसी आती है आज कि यार मैंने ये लिखा था. वो आता है ना मेमरीज़ में, फेसबुक मेमरीज़ आते हैं जो, तो वो मेमरीज़ में दिखाता है कि यार ये पोस्ट मैंने 2012 में डाला था या ये 2009 में डाला था. मुझे इतनी हंसी आती है, मुझे शर्म आती है. मैं दिखाता भी नहीं किसी को, और मैं शेयर भी नहीं करता उसको वापस से कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था, मैं ऐसे लिखता था. तो इंटरेस्टिंग है लाइफ ना. तो कोई लाइफ को जीने का ना कोई सेट पैटर्न नहीं है, सबके अपने पैटर्न है, आप अपने पैटर्न खुद बनाओ. बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं. शाहरुख खान साहब हैं, शाहरुख खान साहब मैक्सिमम टाइम पर शूटिंग करते हैं रात को, लेट नाइट्स, और सुबह घर पर आके सोते हैं 6 बजे. सक्सेसफुल हैं. अक्षय कुमार साहब रात को सोते हैं, 6 बजे निकल जाते हैं शूटिंग करने के लिए. सक्सेसफुल हैं. शाहरुख खान साहब हर जगह लेट पहुंचते हैं, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा. सक्सेसफुल हैं. अमिताभ बच्चन पंचवल हैं, सक्सेसफुल हैं. तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सक्सेस का या अच्छे व्यक्ति का कोई पैटर्न नहीं है. किताबें बहुत हैं मार्केट में, रिच डैड पुअर डैड, ये वो, 5 मंत्रा, 5 लाइफस्टाइल, सब बकवास. मतलब ठीक है आप उनको पढ़ो, मैं ये मना नहीं करता, मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ. मैं बड़ी किताबें पढ़ चुका हूँ, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, स्पिरिचुअलिज्म, सदगुरु, अरब सीरी सीरी रविशंकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू ऑल विल डू इट इन योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू, बट इट इज़ यू हु हैज़ टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि बॉस मुझे बनना कैसा है, मुझे चाहिए क्या. क्योंकि सब अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे के हिसाब से ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है यार जीवन, कि ये मैंने कह दिया तो यही जीवन चलेगा, ऐसा नहीं होगा. मैंने अलग जीवन जिया है, मेरा बच्चा अलग जीवन जिएगा, उसका बच्चा अलग जीवन जिएगा. हाँ कुछ चीज़ें सेम हो सकती हैं, सारी चीज़ें सेम नहीं हो सकती. चलो आगे बढ़ो फटाफट.
नहीं सर, मतलब यही इसी बारे में बात करनी थी. हाँ. आपने लाइफ लेसन के बारे में बात करी, सबका अपनी अलग अलग सोच होती है. तो आपके लाइफ के ऊपर, आप अपने आप को 10 साल बाद 20 साल बाद अपने आप को, लाइक जो आपके फ्यूचर सेल्फ है, उसको क्या एक बोलोगे एक ये लाइफ लेसन, लाइक ये अब तक मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा है और ये आगे तक मेंटेन करना है मुझे अपने लिए?
नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता बॉस. हम इंटरव्यूज देने जाते हैं ना, अभी आप लोग भी जाओगे जब यहाँ से निकल के, तो कंपनी वाले पूछते हैं फॉर्म में दो चीज़ें बड़ी हिलेरियस होती हैं. एक तो वो जेंडर की जगह सेक्स पूछते हैं. कहीं भी आप फॉर्म भरने जाओ तो फॉर्म में होना चाहिए जेंडर, कि आप मेल हो या फीमेल हो, वो लिखते हैं सेक्स. एक तो मुझे उस पर बढ़िया सी आती है. दूसरा वो आपसे पूछते हैं हाउ डू यू सी 5 years डाउन द लाइन. अभी कोविड आ गया, जिन्होंने लिखे थे 5 years डाउन द लाइन वो ऊपर चले गए. वो लिख रहे थे 5 साल बाद मैं 20 करोड़ कमाऊँगा. अब वो ऊपर सेवा कर रहे हैं भगवान की. ठीक है, तो ये जो फ्यूचरिस्टिक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है ना, कि 10 साल बाद क्या, 5 साल बाद क्या, लाइफ का लर्निंग लेसन. मैंने बोला ना आपको, हर 5 साल में आपकी सोच बदल जाती है. जब मैं 27 का था तब आप मुझसे मिले होते तो मैं आपको जीवन का ज्ञान दे रहा होता, 27 की उम्र के हिसाब से. मैं 35 का हूँ, मैं 35 के हिसाब से ज्ञान दूंगा. मेरे पापा 63 के हैं, वो उनके हिसाब से ज्ञान देंगे. कोई ज्ञान नहीं है. यू कीप लर्निंग ईच एंड एवरी टाइम. एक गलती करोगे सीखोगे, एक अच्छा काम करोगे उससे सीखोगे. हाथ जलेगा तो पता लगेगा आग गर्म होती है, पानी में डूबोगे तो पता लगेगा पानी नाक में घुस जाता है. तो ऐसा नहीं है कोई परमानेंट. मैंने कहा ना, कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि ऐसे जीवन चलेगा. जीवन जीने के बहुत तरीके हैं, हर उम्र में, हर उम्र के पड़ाव पे. आपको नए तरह के लोग मिलेंगे, नई तरह की टीचिंग्स मिलेंगी, उन टीचिंग्स को आप अडेप्ट करोगे समय के साथ साथ, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ आपको समाज सिखाएगा, बहुत कुछ आपको परिवार सिखाएगा, और सबसे ज़्यादा जो आपको जीवन में सिखाएंगे वो हैं आपके हालात. ठीक है, कभी आपको जीवन में लगेगा सबसे इम्पॉर्टेंट पैसा है, एक दिन आपको लगेगा सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ है, एक दिन लगेगा सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे हैं, एक दिन लगेगा सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्त हैं, एक दिन लगेगा सबसे इम्पॉर्टेंट मैं हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है, मैं थोप नहीं रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी के इमोशंस हर दिन चेंज होते हैं, हर दिन. कभी कभी सुबह आपकी स्ट्रेसफुल होती है, कभी सुबह आपकी बड़ी जॉली होती है, कभी कभी आप बहुत जॉयफुल होते हो, कभी कभी आप सैड होते हो. अब इसके पीछे बड़ी सारी थ्योरीज हैं, अब वो यहाँ क्या डिस्कस करनी है, लेकिन कोई पत्थर की लकीर नहीं है यार. और मैं तो किसी को कोई, मैं ये ज्ञान नहीं बांटना चाहता कि ये लाइफ का लेसन है बॉस, क्योंकि सबकी ज़िंदगियाँ अलग हैं यार. मैं इतने तरह के लोगों से मिलता हूँ इस प्रोफेशन की वजह से. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा. आज से 3 साल पहले मैं ये दिल्ली में ली मेरिडन होटल है ना, यहाँ किसी बड़े व्यक्ति से मिला. बहुत बड़े व्यक्ति थे वो, तो उनसे हम कॉफ़ी पी रहे थे. तो मैंने उनसे कहा कि पैसे के पीछे कितना भी भाग लो खुशी नहीं आती. मैंने ऐसे उनको ज्ञान दिया. अब वो व्यक्ति थे जिनके पास मर्सिडीज़, BMW, कोठी, सारी सुविधाएं जो होती हैं मेटलिस्टिक दुनिया की, वो थी. अब मैं उनसे कह रहा हूँ कि मैं गया हूँ स्विफ्ट से, वो आए मर्सिडीज़ से. मैं उनसे कह रहा हूँ कि पैसे से खुशी नहीं आती सर, पैसे से खुशी नहीं आती. उन्होंने कहा अच्छा. वो मुझे अब आप देखो बड़े आदमी की निशानी, वो मुझे बहुत पेशेंटली सुनते रहे. बाद में उन्होंने मुझसे कहा शिवांग आप बड़े यंग हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ जीवन का मंत्र. कभी भी ना कंक्लूजन्स पे मत आओ. हम लोग बड़ी जल्दी कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं. क्या कंक्लूजन? जैसे हम बड़े बुजुर्ग नहीं कहते जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ, कहते हैं ना, यानी जितनी औकात हो उतने खर्चे करो. 100 रुपये कमाते हो तो अगर 30 रुपये बचाओ, 40 रुपये बचाओ, बाकी खर्च करो. ये नहीं ज़्यादा 100 के 100 बढ़ा दिया. तो वो क्या है कि उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली. उन्होंने मुझे कहा कि आपकी टेबल पे एक तरफ रखियो खिचड़ी और दूसरी तरफ रखाओ बटर चिकन, उसके बाद बटर चिकन को छोड़ के आप खिचड़ी खाओ, तब तो आप ये कह सकते हो कि पैसे से खुशी नहीं आती. आपकी टेबल पे रखी ही खिचड़ी है और फिर आप ज्ञान बांट रहे हो कि भाई साहब पैसे से खुशी नहीं आती, तो वो दोगलापन है, क्योंकि पैसा आपने देखा ही नहीं तो आपको पता ही नहीं कि खुशी आती कि नहीं आती. बस आप ज्ञान बांट रहे हो जबरदस्ती का कि पैसे से खुशी नहीं आती. अब बड़ी सारी थ्योरीज हैं। पेरेंट्स ने सिखाया कि जितनी चादर उतने पांव फैलाओ। अब आप बड़े लोगों को सुनो, जैसे सदगुरु हैं, शाहरुख खान साहब हैं, बड़े सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, बाहर के हैं, उनको सुनो तो वो यूँ कहते हैं कि द मोर यू स्पेंड द मोर यू अर्न। जितना खर्चा करोगे उतना आप कमाओगे, उतनी आपकी भूख बढ़ेगी। कुछ थ्योरीज हैं स्पिरिचुअलिज्म की, मैनिफेस्ट करो। आपको कार चाहिए तो कार मैनिफेस्ट करो, बंगला चाहिए तो बंगला मैनिफेस्ट करो, है ना। अफर्मेशन जैसे कहते हैं, अफर्म करो। शाहरुख खान साहब ने पिक्चर में बोला, जिस चीज़ को चाहो वो तुम्हें कायनात मिलाने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो किताब है क्या उसकी, सीक्रेट करके है कोई किताब, तो वो सब है यूनिवर्स के ऊपर। तो मैंने क्या बोला आपको, जीवन के बड़े सारे थ्योरीज हैं, बड़े सारे पहलू हैं। अब उसमें घुसेंगे तो बहुत घुसना पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटा आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कोई थ्योरी परमानेंट नहीं है। हमारे पेरेंट्स जो हमें सीख देते हैं वो अपने तजुर्बों के हिसाब से देते हैं, फिर जीवन आपको अपने तजुर्बे देता है, तो आपकी सोच उस तरीके से शेप होती है। कल को जब आपकी कमिंग जनरेशन होगी, जैसे आपने सवाल किया कि टीनेज जनरेशन, तो वो अपने आप सीखेंगे, उनके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे। तो कोई फिक्स रूल नहीं है, और अगर कोई फिक्स रूल होता तो वो हम तक भी तो आता, लेकिन नहीं आया ना। तो एवरी टाइम यू हैव टू मेक अ न्यू फ्रेम, एवरी टाइम यू हैव टू ब्रेक अ न्यू फ्रेम। ओल्ड फ्रेम्स टूटेंगे, नए फ्रेम बनेंगे, नए सांचे बनेंगे, फिर वो टूटेंगे, फिर नए सांचे बनेंगे।
सो सर, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, काफी मजा आया आपसे बात करके, एंड वी आर हाईली थैंकफुल दैट यू जॉइंड अस टुडे।
ऑल माय प्लेजर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई विश यू एंड योर कॉलेज द वेरी बेस्ट, एंड एज यू ऑल आर यंग स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर लाइफ और मौज करो।
फिर मौका मिला हमसे फिर बात,
जरूर 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 जरूर। और मुझे मुझे उम्मीद है कि ये जो आप एफर्ट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट का, ये आपके व्यूअर्स को पसंद आए, लिसनर्स को पसंद आए, और जो ये शुरुआत आपने करी है अपनी सोसाइटी के माध्यम से, इसको बहुत सक्सेस मिले। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू
सो मच,
थैंक यू
थैंक यू।